अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उसकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अलावा 11,029 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सानंद गुजरात की प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसकी क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो संगठन उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं वे देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणा नगर में श्री वारणा महिला सहकारी मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी एक कथित नोटिस का खंडन किया है। इसमें कहा गया है कि वो महीने के अंत तक सभी बीमा उत्पादों और संशोधन योजनाओं को वापस लेने जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि बीमा एजेंसी की ओर से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वर्षा से प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। एनडीआरएफ की टीमें बारिश प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज विजयवाड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित कृष्णालंका, जक्कमपुड़ी और भवानीपुरम क्षेत्रों का दौरा किया। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 194 अंक की बढ़ोतरी के साथ 82,560 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 43 अंक की बढ़त के साथ 25,279 पर रहा। पेरिस पैरालंपिक के पांचवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।